मुझे ऐना और मानव दोनों सही सलामत अपनी आंखों के सामने चाहिए। तुझे जो करना पड़े कर, लेकिन जल्दी से जल्दी दोनों को ढूंढ। उन्हें तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन कौन हो सकता है इसके पीछे? तुझे किसी पर शक है? शक तो बहुतों पर है, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं मिल जाते मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता। वैसे भी अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ऐना है। मैं बस उसकी सेफ्टी चाहता हूँ। वो मिल जाएगी, उसके बाद सच अपने आप सामने आ जाएगा, और जो भी इसके पीछे होगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। कायरव की भौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गई। तू टेंशन मत ले, मैं पता करवाता हूँ। भाभी जल्दी ही मिल जाएंगी, और जहाँ भी होंगी सेफ ही होंगी। नितिन ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद से इन 4 महीनों में कायरव को एक पल का भी चैन नहीं आया। उसने अपने तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी उसे ऐना की कोई खबर नहीं मिली। उस रात उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, क्यों ऐसे बिना उसे कुछ बताए गायब हो गई, वो कैसी है, कायरव को कोई खबर नहीं थी। कायरव ऐना के साथ साथ मानव को भी ढूंढ रहा था। उन दोनों से जुड़े हर शक से पूछताछ हुई थी, यहां तक कि शेफाली से उसने पर्सनली बात की थी। शक उसे अमन पर भी था, और शेफाली ने मन से सवाल किए थे, उसे छोड़कर जाने की धमकी भी दी, लेकिन उसका जवाब हर बार यही रहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, और शायद वाकई इस बार उसे कुछ नहीं पता था। कायरव ने दोनों का नंबर तक ट्रेस कराया, लेकिन ऐना का नंबर की लास्ट लोकेशन पार्टी वेन्यू थी, और मानव की उसके घर के पास की गली। दोनों का नंबर तभी से बंद था, कहीं से भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिल रही थी। वो दोनों ऐसे गायब हुए जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐना गायब थी, इसलिए कायरव ने दादी को भी अपनी बुआ के वहीं रहने कह दिया था। उन्हें अभी तक इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इन 4 महीनों में कायरव ने ऐना और मानव को ढूंढने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब तक उसके हाथ निराशा ही लगी। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो दोनों कहाँ था, और अब ये सब। यहां तक कि वो ये तक पता नहीं लगा सका कि आखिर इन सब के पीछे है कौन। अगर ये पता चल जाता तो शायद वो उन दोनों तक भी पहुंच जाता। कायरव के दिमाग में तूफान सा उठने लगा था, सर दर्द से फट रहा था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और कायरव चौंकते हुए उसने ख्यालों, अतीत की उन यादों से बाहर आया। फौरन सर घुमाकर देखा, सामने बैल्कनी के गेट के पास आशा सर झुकाए खड़ी थी। कायरव ने भौं उठाते हुए सवाल किया, मैंने कहा था कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। सॉरी सर, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन नीचे बड़े साहब आए हैं और आपसे अभी ही मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि आप अभी अभी आए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो माने ही नहीं। बड़े साहब मतलब मिस्टर रायचंद, और इस वक्त यहाँ आए हैं? सुनकर ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए, और भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। तुम चलो, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। आशा ने तुरंत सर हिलाया और उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां से चली गई। डैड, और इस वक्त यहाँ? इन्हें पता कैसे चला कि मैं वापस आ गया हूँ? उनके इस वक्त यहाँ आने के पीछे क्या वजह होगी? ऐसी भी क्या बात करनी है उन्हें मुझसे जो अभी ही करनी जरूरी थी? मेरे इन सवालों के जवाब नीचे जाकर ही मिलेंगे। कायरव मन ही मन ये सोचता हुआ रूम में पहुंचा, अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया और रूम से बाहर निकल गया। नीचे आया तो मिस्टर रायचंद पूरे ठाट बाट के साथ सोफे पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गुरूर और होठों पर दम भरी मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर ही कायरव को अजीब सा फील होने लगा। कुछ तो अजीब था, नहीं एक्चुअली सब कुछ ही अजीब था। उनका यहाँ इस वक्त आना, ऐसे बैठना, मुस्कुराना, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कायरव गहरी निगाहों से उन्हें देखते हुए नीचे आया और उनके सामने वाले सिंगल सीटर सोफे पर बैठ गया। कहिए, क्यों आए हैं अब आप यहाँ, जब मैं पहले ही आपसे सारे रिश्ते खत्म कर चुका हूँ? तुम्हारे बोलने से क्या होता है? तुम क्या, खुद भगवान भी ये सच नहीं बदल सकते कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। ये जो रिश्ता है इसे कोई नहीं तोड़ सकता, और मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। काफी वक्त हो गया, तुम तो घर आए नहीं, शायद बीवी के आगे माँ बाप को भूल गए, लेकिन हम तो अपने इकलौते बेटे को नहीं भूल सकते, इसलिए खुद ही चले आए तुमसे मिलने। मिस्टर रायचंद ने बहरी मुस्कान भरी, साथ ही तंज भी कसा, जिसे सुनकर कायरव के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। बेटा, मुझसे मिलने आए हैं आप? मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मैं आपको भूल गया, लेकिन आपको अपने इस बेटे की याद आई इसलिए आप खुद आ गए मुझसे मिलने। जैसे मैं आपको नहीं जानता, जब तक आपका फायदा ना हो आप किसी को याद नहीं करते। अगर इतने महीनों बाद आज यहाँ आए हैं तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी, इसलिए अब ये नाटक बंद कीजिए और साफ साफ बताइए क्यों आए हैं आप यहाँ। मिलने आया हूँ भाई, अब क्या मैं अपने बेटे से मिलने भी नहीं आ सकता? मिस्टर रायचंद ने उसकी बात को इग्नोर ही किया और आसपास नजरें घुमाते हुए बोले, वैसे कहाँ है तुम्हारी वो बीवी जिसके लिए तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया? सुनने में आया है कि तुम्हें लाखों का नुकसान करके तुम्हारे पैसे लेकर अपने यार के साथ भाग गई, और अब तुम उसे ढूंढते भटक रहे हो। 4 महीने हो गए ना उसे गए, मिली नहीं अभी तक। मिस्टर रायचंद के होठों पर तिरछी मुस्कान बिखरी थी। कायरव के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए और भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। क्या किया है आपने मेरी ऐना के साथ? मैंने क्या किया है? मिस्टर रायचंद अनजान बनते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं। जो किया वो तो तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ ने किया। वही वाइफ जिसके लिए तुमने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते खत्म कर दिए, अपने बाप को अपना दुश्मन बना लिया, और वही लड़की तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप कर तुम्हें धोखा देकर अपने यार के साथ भाग गई। मिस्टर रायचंदा उठकर खड़े हो गए और तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए तंजिया स्वर में बोले, वो लड़की इनाया, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थे, वो तुम्हें ही छोड़कर चली गई। जब मैं तुम्हें समझाता था कि उस दो कौड़ी की लड़की से दूर रहो, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, तब बहुत बुरा लगता था ना तुम्हें? देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो लड़की तुम्हारे पैसों के पीछे थी और मौका मिलते ही पैसे लेकर फरार हो गई। मिस्टर रायचंद की बातें कमरे में जहर की तरह फैल गईं। इनाया के लिए नफरत उनके अल्फाजों से लेकर चेहरे तक में साफ झलक रही थी। अपनी खटिया जुबान से उसका नाम भी मत लीजिए, कायरव ने गुस्से से जबड़े भींच लिए, उसकी नसें तन गई थी। इनाया के लिए ऐसी बातें, उस पर लगे ये इल्जाम वो बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी जुबान नहीं, तुम्हारी पसंद खटिया थी। मेरे खिलाफ जाकर तुमने उस लड़की को चुना था, आज वही लड़की तुम्हारी इज्जत, हमारे खानदान की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाकर चली गई। इतना समझाया था मैंने तुम्हें कि उस जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, कुछ रातें साथ बिताओ और भूल जाओ, उनके साथ जिंदगी नहीं बिताई जाती। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, उस दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली और अब वो लड़की अपनी औकात दिखा गई, तुम्हें धोखा देकर अपने आशिक के साथ भाग गई। नफरत से उनकी आंखें अंगारों सी जल रही थीं। कायरव के लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया, वो गुस्से से चीखा, बस अब मैं इनाया के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। किसे धोखेबाज कह रहे हैं आप? आपको क्या लगता है आप जबरदस्ती उससे इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाएंगे, एक लेटर लिखवाएंगे, कुछ फेक पिक्चर्स दिखाएंगे और मैं उन पर विश्वास करके अपनी वाइफ के कैरेक्टर पर उंगली उठा दूंगा, अपने रिश्ते पर सवाल उठाऊंगा, आपकी झूठ के जाल में फंसकर अपने रिश्ते को बर्बाद कर लूंगा? बहुत गलत सोचा आपने, शायद अब तक भी आप मुझे ठीक से समझ नहीं पाए हैं।
कायरव का कॉन्फिडेंस से भरा अंदाज देखकर मिस्टर रायचंद के एक्सप्रेशन बिगड़ने लगे। कायरव तीखी निगाहों से उन्हें घूरते हुए तिरछा मुस्कुराया। टू बी कंटिन्यूड।